نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. محترم بزرگ و بھائیو، فتنے آتے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہوتا ہے، انسانوں پر فتنے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمائش اور حکمت کے ساتھ تو اس کی بہت سی خصوصیتیں ہوتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد mentioned that they expect to bear the rivers. When the trials and tribulations comes from Allah subhanahu wa ta'ala, there are a lot of specialties of these trials and tribulations.
یہ فتنے خود انسانوں کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں.
And these trials come because of the bad deeds and misdeeds of the human beings.
عمل تو انسانوں کا ہوتا ہے، فیصلے پھر اللہ کے ہوتے ہیں عمل کی بنیاد پر.
The actions are of human beings, but the decisions come from Allah subhanahu wa ta'ala based on the actions of human beings.
اور فتنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی خبر دی ہے وہ ہیں جو اس کا تعلق دل سے زیادہ ہوتا ہے.
And about these trials and tribulations about which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informed us, these trials and tribulations are related to the heart.
جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تغرس الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر آئیں گے ایسے جیسے چٹائی کی پتیاں ہوتی ہیں.
As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in hadith, the close meaning of which the trials and tribulations will come on the heart as the mat which is woven.
یعنی وہ ایک دوسرے میں ایسے مرج ہوں گے جیسے چٹائی کی پتیاں ہوتی ہیں.
These things will be woven as closely as you would see the mat will be woven.
اور ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے.
And these are related to each other.
اب جو آدمی فتنے سے ایک فتنے سے مانوس ہوگا تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جائے گا.
And a person who is attracted towards this fitna, then he will have a black dot on his heart.
اور چونکہ دوسرا فتنہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا پھر وہ دوسرے سے بھی مانوس ہوگا تو اس کے دل کی سیاہی میں اضافہ ہوگا.
As a person gets closer to the other fitna because it will be related to the first one, there will be another dot and then hence there will be increase in the darkness of the heart.
ایسے جو جو نئے نئے فتنوں سے مانوس ہوتا چلا جائے گا اس کے دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
And as he gets closer to more and more fitnas, his heart gets more blacker.
اور جو آدمی فتنے سے اپنے کو بچا کے رکھے گا تو دل میں اس کے ایک روشنی پیدا ہو جائے.
The person who saves himself from these trials, there will be a bright light or there will be a, an illumination that's embedded in the heart.
اب وہ دوسرے فتنے سے اپنے کو بچائے گا تو چونکہ پہلے سے ریلیٹڈ تھا تو اس کے دل کی روشنی میں اور اضافہ ہو جائے گا.
He said that when he saves himself from another fitna which is related to another fitna which is related to the previous ones, then there will be increase in the nur and illumination of his heart.
इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हत्ता तकुन अलकुलूब कलकलबैन, इंसानों के दिल दो दिलों में बढ़ जाएंगे.
And so Rasulullah said that finally the hearts of the people will be divided into two groups.
या तो बिल्कुल सियाह दिल हो जाएंगे.
Or it will be like completely blackened hearts.
या बिल्कुल रोशन दिल हो जाएंगे.
Or the other ones which are completely bright.
اس لیے قیامت کے قریب مذہبی رجحان جو ہوگا وہ یا تو بہت زیادہ ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا.
So it's close to the days of the qiyamah, you will see people leaning towards the mazhab, leaning towards the religion more or absolutely not.
جو آدمی دین کی طرف متوجہ ہوگا وہ خوب متوجہ ہوگا.
The person who is tending towards the deen, he will be tending towards the deen more.
اور جو دین سے بیزاری کرے گا وہ بہت زیادہ بیزاری کرے گا.
The person who will be moving away from the deen, he will be moving far away from the deen.
اس لیے ہم سب کو اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں.
So we all need to try and make effort that we all save ourselves from trials.
اور ہماری اولادوں کو بچائیں. مسئلہ بگڑنے کا آتا ہے اور مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو مسلمان قابل توجہ پہلے ہوتے ہیں.
So that when things are bad and it is as things on both Muslims and non-Muslims, then we give preference to the Muslims.
پہلے مسلمان کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس پر قابو اللہ پاک دے دے تو پھر آگے بڑھا جائے گا.
So first we will try to rectify the Muslims, and if we are able to get hold of that, then inshallah we will move forward. And this is a fine point not many people know. That's why people say that why are you doing tabligh in Muslims, go and do it non-Muslims.
उनको नहीं मालूम है कि जब मुसलमानों में बिगाड़ होगा तो वो तबलीग के मामले में वो मुकद्दम होंगे पहले होंगे
these people don't know that then where is the bigad when there is a disobedience in Muslims the Muslims will be given the preference
इसीलिए आप देखेंगे कि मूसा अलैहि सलाम के बाद बनी इसराइल में जितने पैगंबर आए सब मुसलमानों में आए
so you see that after Musa alayhi salam all the prophets that came in Bani Israel they came in Muslims
क्योंकि वो तौरात के मानने वाले थे पूरे
these people were the believers of Torah
पैगंबर आते थे तौरात पर अमल करने की तरकीब देते थे
then because prophets used to come and they would basically encourage them to follow Torah
क्योंकि बिगाड़ उनमें आ गया था
because there was disobedience that came into them
हजरत साहबा के जमाने में जो इस्लाम कबूल कर लेता था वो इस्लाम पूरी तरह कबूल कर लेता था उसमें बिगाड़ बाकी नहीं रहता था
the people of the time of Sahaba رضی اللہ تعالی عنہ who would accept Islam they would accept Islam completely there would be nothing wrong in them
उनमें कोई गश्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी
देयर वाज नो नीड टू डू जौला एंड गश्त देयर
इसीलिए उनको ऑटोमेटिकली गैरों में जाना पड़ता था
दैट्स व्हाई दे वुड ऑटोमेटिकली गो इनटू द नॉन मुस्लिम्स एंड मेक एफर्ट्स
एक कबीला ऐसा था कि जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली थी कि कोई गड़बड़ उसमें हुई है तो आपने सबको पता है कि आपने एक मर्तबा मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया कि अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर करो वरना मैं दुनिया में तुमको सजा दूंगा
Then Rasulullah came to know about a clan where there were some problems with them, and when Rasulullah came to know about it, he gave the khutbah and told the Sahaba that enjoy good and forbid evil. If you don't do it, I'll punish you right in this world.
Sahaba ye samjhe ki ek aam baat hai, ek umumi baat hai.
Sahaba thought that this was a general talk.
Aapne khade hokar dobara phir ye baat farmayi.
He stood up and he said the same thing again.
फिर भी साहबा को अंदाजा नहीं हुआ
and again, sahab Rasulullah didn't get it.
तीसरी मरतबा आप खड़े हो गए आपने फिर यही बात फरमाई
and he stood up and again said the same thing.
तो हर एक सोचने लगा कि हमारे बारे में तो नहीं है ये बात
Everybody was started thinking that is he talking about us?
हज़रत अबू मूसा अशअरी رضی اللہ تعالی عنہ खड़े हुए फरमाए कि अल्लाह के रसूल क्या हम मुराद हैं आपकी
आप
चाहते थे कि खुद मुतवज्जे हो उनके कबीले में कोई बात हो गई
थी
ने फरमाया कि अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमको एक साल की मोहलत दी थी अगर एक साल के अंदर हम अपनी इस्लाह नहीं कर लिया हमारे कबीले वाले तो फिर आप सजा दीजिए वो एक किस्सा मिलता है साहबा में कि हजरत साहबा में मेहनत करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया
यू फाइंड दिस वन स्टोरी इन द लाइफ ऑफ साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु मीन वेयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ साहबा टू वर्क अमंग देमसेल्व्स
और बाकी वो लोग दावत के लिए चले जाते थे बाहर
अदर देन दैट ऑल द साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु मीन वुड गो आउट फॉर दावत
और दावत जब गैरों में जाती है तो उसकी खसूसियत यह है कि उसकी एंड लड़ाई पे होती है इसलिए सहाबा को जाना पड़ता था हमेशा जान को हथेली पे ले वो मसला है उनके साथ जो पेश आता
था
गर्ज ये है कि मेहनत जो होगी वो अगर मुसलमानों में खराबी आ रही होगी तो मुसलमानों में पहले होगी और वो ये है कि जब फितने आ रहे होंगे तो फितनों का इलाज उनमें ज्यादा करना
पड़ेगा
जाहिर है कि हम जिस जमाने में हैं ये जमाना बहुत ज्यादा फितनों का है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन फितनों की पेशन गोई फरमाई सब उसमें हम सब इस वक्त घिरे हुए हैं
All the fitnas that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam foretold about, we are all surrounded by those fitnas.
और ये कैसी चीज़ है कि हर मुसलमान को इसका एहसास है?
It is something that every Muslim understands.
चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो,
whether he is learned or unlearned.
ज़्यादा बाशूर वकील के तौर से या ना हो, सबको अंदाज़ा है कि इस बात हम फितनों में.
Whether he understands deen much or not, but everybody understands that we are surrounded by fitnas now.
ये फितने जो हैं वो दिल से मुतालिक ज्यादा हैं
These fitnas are more related to the heart.
इसका हम अंदाजा नहीं कर रहे
And this is something that we are not understanding properly.
हम समझ रहे हैं कि फितने का ताल्लुक बाहर से है
And we understand that the relationship of fitna is something that is outside us.
फितनों का ताल्लुक दिल से है
Now the relationship of these fitnas is with our heart.
इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के फितनों को पहले बताया.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टॉक्ड अबाउट द फितनस ऑफ द हार्ट फर्स्ट.
दिल का फितना क्या है?
व्हाट इज द फितना ऑफ द हार्ट?
दिल के फितने में से एक बड़ा फितना होता है इल्म का गलत होना.
वन ऑफ द बिग फितनस ऑफ द हार्ट इज हैविंग द रॉन्ग नॉलेज.
क्योंकि जब इल्म गलत होगा तो अमल भी लाजमन गलत होगा.
नॉलेज इज रॉन्ग, ऑब्वियसली द एक्शन विल आल्सो बी रॉन्ग.
और जब इल्म गलत होकर अमल गलत होता है तो फिर आदमी को अपने अमल के गलत होने का एहसास नहीं रहता, तो उसमें तौबा के इम्कान नहीं रहते.
Then he will not have this realization it is wrong and hence he will not be repenting.
क्योंकि उसके इल्म की खुसूसियत ये है कि वो गलत होकर जो सही था वो गलत बता रहा है, जो गलत था वो सही बता रहा है.
And the specialization of his ilm would be whatever is right is showing him as wrong and whatever is wrong is showing him as right.
ये चीज पूरे दीन को पलट देगी.
And this whole thing will completely turn the whole deen
upside down. मजहब के नाम से बेमजहबी मजहब बनेगी.
People on the name of the religion will become irreligious.
क्योंकि जो चीजें गलत होंगी वही मजहबी आएगी, बस सही से आदमी के ज़हन में आ जाएंगी कि ये सही है.
Those things that are wrong, the person will be thinking that from religious perspective these are right.
हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस वक्त गुजर रहे हैं उसमें ये सबसे ज्यादा है.
The time that we are, the period that we are passing through, this is the most important thing.
और इसकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इत्तला दी.
And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has informed about this.
जिसको आपने ये फरमाया कि कैफ बिकुम, तुम्हारा उस वक्त में क्या हाल होगा जब जो मारूफात हैं वो मुनकरात दिखाए जाएंगे, समझे जाने लगेंगे, और जो मुनकरात हैं वो मारूफात समझे जाने लगेंगे.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लोज मीनिंग ऑफ इट, व्हाट विल हैपन टू यू एट दैट टाइम व्हेन पीपल विल बी प्रेजेंटिंग द बैड एज गुड एंड गुड एज बैड.
सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़ारे के लगा आएंगे या रसूलुल्लाह, ऐसा होगा? इससे भी ज्यादा शदीद
होगा.
वो वक्त कैसा होगा जब तुमको हुक्म दिया जाएगा बुराइयों का, उमिर अल मुनकर, हुक्म दिया जाएगा बुराई करने का बाय ऑर्डर, और रोक दिया जाएगा तुमको, हुक्म दिया जाएगा भले काम से,
इसे
रोकने का हुक्म दिया जाएगा भले काम से.
How will that time be that when you will be commanded to do bad and you will be stopped from doing good?
बिल्कुल इल्म बदल जाएगा.
Whole knowledge will be upside down.
रुया का लफ्ज बता रहा है कि यानी आदमी की समझ में ही वो आ जाएगा.
He said that the word in the hadith mentions that this is how the people will understand it.
यानी ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी समझ रहा है कि सही ये है मगर मुझे हुक्म दिया जा रहा है गलत का, ऐसा नहीं, बल्कि जिसका हुक्म दिया जा रहा होगा वो समझ रहा होगा कि वो सही है.
He said that it is not that the person will know that you know this is right, but I've been asked to do something wrong. But he will be of this understanding. No, this is right, and they're asking me to do it.
इस वक्त पूरी दुनिया में कदरें बदल रही हैं मेरे दोस्त.
This is how things are changing in the whole world now.
मिसाल के तौर पर तालीम है.
For example, education.
एजुकेशन का मतलब बदल दिया गया.
The meaning of the education has been changed.
और हमें पता भी नहीं चला.
And we didn't even understood this.
असल इल्म वो है जो अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया.
The true knowledge is the one that Allah Subhanahu wa Taala has given to Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam. हुजूर को इल्म ही दिया गया
है. Knowledge was given to Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. अंजला वो इल्म, अल्लाह ने इल्म ही तो उतारा है.
Allah Subhanahu wa Taala has descended the ilm.
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور آپ کا اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے.
Allah Subhanahu wa Taala says the close meaning of it that Allah Subhanahu wa Taala has given you that knowledge that you didn't understand, and this is a big favor of Allah Subhanahu wa Taala.
عَلَّمَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِي. مجھے میرے رب نے علم دیا ہے, بہترین علم دیا ہے.
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the close meaning of it, Allah Subhanahu wa Taala has bestowed the knowledge on me and he has given the best thing to me.
وَأَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِي. اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا, بہترین ادب سکھایا.
The close meaning of it, Allah Subhanahu wa Taala has taught me the manners, and Allah Subhanahu wa Taala has taught me the best of the manners.
Adab kehte hain kaam karne ke tareeqe ko.
And manners is the way of doing things.
Har kaam ka tareeqa Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ko Allah ka sikhaya hua hai.
Everything that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has done has been taught by Allah Subhanahu wa Taala.
Chote se chota, bade se bada.
Whether it is a small action or a big action.
इसलिए वो काम जो जरूरी है मजहबी एतबार से, और जो वो काम जो हुजूर की आदतों में से, सब हुजूर को अल्लाह का सिखाया हुआ है.
And all those actions that are necessary as for the religion and all those actions that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then out of habit, all of these things have been taught Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Isliye farmaya adabani rabbi, mujhe mere rab ne adab sikhaya aur behtareen adab sikhaya.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that Allah subhanahu wa ta'ala has taught me the manners and he has taught me the best of the manners.
Ilm ka taluq is baat se hota hai ki is duniya ke liye insaan ko kis maqsad ke liye bheja gaya hai.
The relationship, the knowledge basically teaches the human being on why he has been sent into this earth.
علم کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کا پیدا انسان کا پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے اور کیسا ہے.
The relationship of knowledge is with understanding that who has created this universe and how he is.
وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے.
What pleases him and what displeases him.
جب وہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے.
When he is pleased, what does he do? And when he is displeased, what does he do?
علم کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا انجام کیا ہے.
The knowledge is related to this, that understanding what is the end goal and state of the life of human.
کن چیزوں سے اس کی کامیابی کا تعلق ہے، کن چیزوں سے اس کی ناکامی کا تعلق ہے.
What are the things that his success is related to and what are the things that his failure is related to.
یہ جو ٹاپک ہے آپ جو ہے نا کے جی سے لے کے یونیورسٹی تک چلے جائیں.
For this topic, you can go from kindergarten all the way to the university.
ایک بھی چیپٹر نہیں ملے گا.
There will be no chapter that will talk about these things.
یہ چینجز ہیں.
This, these are the changes in knowledge.
جو علم نہیں ہے وہ علم ہو گیا، جو علم ہے وہ علم ہی نہیں رہا.
The thing that is not knowledge that has become the knowledge, that the thing that is truly knowledge that has not become knowledge anymore.
جب آدمی کو پتا چل گیا کہ علم ضروری ہے اور علم سے یہ مراد ہے، تو پھر اب جتنے ایجوکیٹڈ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے.
Then now you just can understand that when human being have this wrong perception that this is knowledge and this is what is intended, that you can understand what will happen.
Kitni mehnat hogi, kitna paisa lagega, kitne log apni aulad ke piche lagenge, unko pick and drop ke upar kya kuch karenge, unki feesein bharenge, unka uniform dilayenge, unko books dilayenge, unke piche salahiyat lagayenge, jabri nizam e taleem ka nizam dilega. Puri duniya mein ilm ke naam se jo cheez chalegi wo hoga jo ilm nahi.
Then you can understand when this person has this wrong perception that this is knowledge, then you will see how much time, effort and money the people will put in and how much they will force and emphasize on their children and get them all the facilities like books and uniform and everything, and also to a point where people force others to get this knowledge even though this is not the true knowledge.
Aur asal ilm se ummat dur ho jayegi.
And the ummat will be far away from the true knowledge.
انسانیت میں سب سے بڑی چیز تہذیب اور ثقافت ہے.
The biggest thing in the human beings is the culture.
اب آپ دیکھ لیجئے کہ کلچر کے نام سے کیا چیز چلی دنیا میں.
Just now look around the name of culture, what they have started propagating.
جتنے کلچرل پروگرام ہیں اس میں کسی میں کوئی تہذیب کی بات ہے کیا؟ دیکھ لو.
You say that if you look at all these cultural programs, do you have any emphasis, any insistence on the manner of doing
it? ناچ ہے، گانا ہے، ڈانس ہے، ننگاپن ہے، بےہودگی ہے، ڈرامے ہیں.
He says that all this is these days you will see the dance and dramas and vulgarity and nudity and everything associated with it.
معاشرت کے بارے میں دیکھ لو آپ.
And you look at the, how the people are living.
معاشرت کے جتنے کھانے پینے کے، پہننے اوڑھنے کے، رہنے سہنے کے جتنے طور طریقے پوری طرح بدل گئے، اس کی قدریں پلٹ گئی.
You see that all the ways, the way people live and the people dress and the people behave, all those has completely changed.
خوشی منانے اور غم منانے کے جو طور طریقے ہیں اس کی قدریں پلٹ دی گئی.
The ways the people used to celebrate their happiness and then sorrows, all those have turned up as upside down as well.
اچھی شادی کون سی شمار ہوتی ہے؟
What is considered as a good marriage?
کیا شادی کرا ہوا وہ آدمی؟
What a good marriage that he
has. کس نے زیادہ کتنا شادی بڑا شادی خانہ لیا؟
The whoever has bought biggest.
کس نے کتنی زیادہ لائٹنگ کی؟
Who has the biggest lights?
کتنا جو ہے نا اس کے اندر شو پٹ اپ ہوا؟
How much show they put up?
کتنے فضول قسم کے پروگرام اس میں چلے؟
How much waste programs they had?
اس کا نام یہ ہے کہ بہت اچھی شادی.
This is basically what we are terming as a very good marriage.
دم بدل گیا ہے،
completely
معاشرت کا نظام بدل گیا، پتہ بھی نہیں چلا ان کو.
And this whole system changed and we didn't even realize.
کلچر بدل گیا، پتہ نہیں چلا.
Culture has changed and we didn't realize.
عزت کی قدریں بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا.
And the measure of honor has changed and we didn't even realize this.
حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس میں یہ ہوگا کہ مال عزت کا معیار بنے گا. جس کے پاس مال نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی پائس اور نیک متقی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں
ہوگی.
اسلام کی قدر الگ ہے. انا کرمکم عند اللہ یتقاکم.
Is it the qadr of the Islam is completely different, but Allah subhanahu wa ta'ala says the one who's most you know, closer to Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has taqwa.
Maal hona koi izzat ki cheez thi nahi pehle.
And having wealth was not the sign of honor in the past.
Isliye koi aadmi apne maaldar hone ko zahir karne mein bhi sharmata tha.
In the past, the people who are wealthy, even to display their wealth, they would really hesitate.
क्योंकि उसको फिरौन से रिलेटेड किया जाता था.
Because they were, he was related to Firaun.
कारून से किया जाता था.
He would be related with Qarun.
नमरूद और शद्दाद से किया जाता
था. He would be related with Namrud and Shaddad.
ये तो फिरौन की विरासत है.
It's like the inheritance of Firaun.
ये तो कारून की विरासत है.
The inheritance of Qarun.
ये तो दुनिया में मुब्तला करने वाली चीज है.
This is something that will engage you in dunya.
ये आदमी जो है ना मुत्तकी परहेज़गार नहीं होगा.
This person will not be मुत्तकी and परहेज़गार. This will not be pious person.
जो आदमी मालदारों से मिलता था ज्यादा उसकी हैसियत गिर जाती है.
The person who would meet with wealthy people, even he will be looked down in the society.
आप बुजुर्गों के किस्से में जो मिलेंगे कि बुजुर्ग मालदारों के पास नहीं जाते थे उसकी वजह हुई.
And you will see that in our pious predecessors and their stories, you will see they would not want to go to wealthy people.
क्योंकि जो आदमी उसे मिलता था उसके बारे में तोहमत लगा दी जाती थी कि ये दुनिया तलब है इसको अल्लाह पसंद नहीं.
इसे इवन दोस पाइस पीपल हु गो एंड मीट द वेल्थी पीपल, पीपल वुड थिंक दैट दीस आर द पीपल हु आर इन डिजायर ऑफ वेल्थ.
खतर पलट गई पूरी.
एंड नाउ यू सी
आप कितने ही अपने पढ़े लिखे हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, सब है, आपके पास ये कितने हैं, बस ये देखा जाए.
एंड नाउ यू विल सी दैट मेजर हैज कंप्लीटली चेंज्ड, वेदर यू आर एजुकेटेड, वेदर यू आर पाइस, वेदर यू आर मुत्तकी, इट डजंट मैटर एनीमोर, इट ओनली सीन एज हाउ मच वेल्थ यू हैव.
उलमा ने फरमाया है कि अगर कोई आदमी दीनदार नहीं है खाली मालदार है, कोई दूसरा आदमी उसको ये समझ के देखे कि वह क्या मालदार है,
if somebody looks at him and says that how wealthy he is,
ये गुनाह कबीरा है.
This is a major sin.
हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने अज़वाजर में लिखा है, النظر الى الغني لغناه كبيره, किसी गनी को उसके गनी होने की वजह से देखना कबीरा गुनाह है.
He said that looking upon somebody with an honor just because of their wealth, this is a major sin.
क्योंकि इसने कदर पलट दी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
Because this person has changed the measure that Rasul sallallahu alaihi wasallam has given to look at the people for honor.
और अल्लाह रब्बुल इज्जत की.
And the measure that Allah had put in place.
क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज को हकीर बताया या इसको अजीम बताया.
You think that Allah subhanahu wa ta'ala has thought about lowly, he is considering this to be very.
नबी ने जिसको बेहसियत बताया या इसको हैसियत दे रहा है.
The Rasul sallallahu alaihi wasallam has said something that is have no value, he is giving value.
तो इसका अंदर बिल्कुल अपोजिट है नबी के अंदर के.
His inside is completely opposite to the inside of Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. ये फितने हैं.
These are the fitnes.
आप देखेंगे कि इतना धीरे 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 इतनी तब्दीली है कि तकरीबन पूरा जिंदगी का अंदाज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बदल गया और हमें पता भी नहीं चला कि कब मारूफात मुनकरात बने कब मुनकरात मारूफात बने.
That we didn't even realize that when the good has become bad and bad has become good.
शादी हो, शादी की तकरीब हो रही हो तो लोग बोलते भाई जरा ड्रेसिंग करके आ जाओ, जरा शादी में जाना है, बहुत बड़ी शादी है, पैसे वालों की शादी
है. When there is, you're invited for the marriage, people say come well dressed because we have to go to a marriage and it's a marriage of wealthy people.
अब आप बोलेंगे नहीं मैं ये शर्ट सलवार में पंजाबी सूट है मेरे पास, मैं चल रहा हूँ ना ये शर्ट सलवार, अरे तेरे पास कपड़े नहीं है अच्छे.
The person says that no, I just want to go in this kurta and shalwar, whatever I have. Then people will say, you don't have any clothes.
ऐसा बदल गया. हमको अंदाजा भी नहीं हुआ.
And look how things have changed, and even we didn't realize this.
कि बड़ी शादी में, मुआज़ज़ शादी में, इज्जत वाली शादी में अगर जाना है, तो फिर कपड़े अपने इस्लामी नहीं होने चाहिए.
Is it that then we have come to this understanding that if you have to go to a marriage and there are a lot of honorable people, then the clothes should be Islamic.
हम समझ रहे पलटे का जमाना नहीं, कभी के पलट चुका है, हमें अंदाजा भी नहीं, फितना बोलते उसको.
And we think that the things will change in the future. No, the things have already changed and we didn't realize that this is what is called fitna.
इसी वजह से फिर क्या होगा, दीन बेदीन बनेगा, बेदीन दीन बन जाएगा.
And this, then what will happen is, you know, the things of deen will become the things of non-deen and non-deen will become deen.
अगर आप जो है ना इस अंदाज से मैंने अर्ज किया है आप सोचते जाएंगे तो आपको और बहुत कुछ मिलेगा ऐसा.
And if you start understanding and thinking as I'm mentioning to you, you will find many things like this.
हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ मेरे दोस्त.
And we didn't even realize this.
फितनों से अपने को बचने का तरीका क्या है?
And what is the way to save ourselves?
कैसे आप इससे निकलेंगे?
How can you get out of this?
इससे निकलने का एक ही तरीका है.
And there's only one way to get out of this.
और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत.
And that is the effort of ला इलाहा इल्लल्लाह.
और वही समझने का है असल में.
उम्मत
अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेहनत करेगी तो न सिर्फ ये कि जो फितने में मुब्तला हो चुकी है उससे निकलेगी, जो आइंदा फितने आने वाले हैं उनसे भी बचेगी.
That when the Ummah does the effort on La ilaha illallah, not only that we'll be saved from the fitna that we are already involved in, but we'll also be able to save ourselves from fitna that are coming in the future.
क्या लिंक है इन दोनों बातों में?
And what is the link in between these two?
बहुत ही गहरा लिंक है.
There's a very deep link between these two.
है बहुत लंबा समय.
This is a very long.
बस टाइम थोड़ा है.
We don't have much time.
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हद तक इम्कान जो अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे उसको अर्ज करने की कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की जो मेहनत है इसका फितनों के इलाज से कैसे
ताल्लुक है.
दुनिया में जो इंसान जिंदगी गुजारता है उसके एक मजमूई निजाम होते हैं.
Person spends a life in this dunya, there is a collective system, whole system about this.
और एक पूरे के पूरे निजाम की तर्जमानी किसी खास उनवान से की जाती है.
And this whole system is explained with some specific subject.
जैसे मिसाल के तौर पर यूं कहिए, यूं कहिए आपकी कम्युनिज्म ये है.
For example, you say this is what communism is.
जिसके अंदर होता यह है कि इस तरह की निजाम होता है, मिल्कियत जो है वो किसी की नहीं होती, हुकूमत की होती है, पब्लिक की नहीं होती.
In that system you'll see that it will be a collective system, nobody is the owner of anything, the government owns everything.
गवर्नमेंट कहती है कि सब तुम्हारा कमाया हुआ जो भी है, पूरी आवाम का जो माल है वो हमारा है, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे एजुकेशन का, तुम्हारे हेल्थ का, तुम्हारे फला फला चीजों का इंतजाम हमारे जिम्मे है, मिल्कियत हमारी है.
The government says that everything that you all are earning, it belongs to the government. The government will take care of your expenses of eating and education and whatever.
इस पूरे निजाम को वो एक लफ्ज़ से जाहिर करते हैं.
And this whole system is represented with one word. That is
वो है इस तरह के निजाम.
And that is the communism.
अब जैसे जमहूरियत एक लफ्ज़ है.
Like democracy is a word.
उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि भाई 100 आदमियों में से 51 आदमी जो बात बोले वो कानून है.
And what happens in the democracy? Out of 100 people, 51 says whatever they say, that becomes the law.
चाहे वो सही बात को गलत बोले या गलत बात को सही बोले.
Whether say something right to wrong or wrong to right.
वहाँ पे अकल नहीं तोली जाती, सर तोले जाते हैं.
Their wisdom is not weighed, but only heads are weighed.
बस 51 किधर है?
And you just see where are the 51 heads.
51 बोल दिया कि भाई ये सही है, तो वो सही है.
If 51 people say this is right, then it is right.
एक निजाम है जम्हूरियत.
That is the system of democracy.
उसको वो लोग ताबीर करते हैं, वो जम्हूरियत से ताबीर करते हैं.
That's basically what they say. This is democracy.
La ilaha illallah एक निजाम है.
Similarly, la ilaha illallah is a system.
जब उस पूरे निजाम को जाहिर किया जाता है, तो वो la ilaha illallah से जाहिर किया जाता है.
When the whole system is represented, then it is represented as la ilaha illallah.
ये दावत होती थी अंबिया की कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोल लो, कामयाब हो जाओगे. यानी इस नजरिए को कबूल कर लो, ये इसके थ्रू तुम्हें दिया जाएगा, बस तुम कामयाब हो जाओगे.
दिस वुड हैव बीन द दावत ऑफ अंबिया अलैहिस्सलाम दैट यू से ला इलाहा इल्लल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल. दैट इज यू अडॉप्ट दिस होल सिस्टम एंड विजन एंड यू विल बी सक्सेसफुल.
इस निजाम की बड़ी अजीब खसूसियत होती है.
स्पेशलिटीज ऑफ दिस सिस्टम.
इसमें यह होता है कि मिल्कियत जो है ना पब्लिक की ना गवर्नमेंट की.
And in this, the wealth does not belong to public, neither it belongs to government.
सब अलग.
It belongs to Allah.
वो माफ़ी समावाती, वो माफ़ी अर्दी, वो माबाई ना हुआ, वो मात हाथ तरह. वही मालिक है उन सब चीजों का जो आसमान में, वही मालिक है उन सब चीजों का जो जमीन में, और वही मालिक है उन सब चीजों का जो इन दोनों के दरमियान में, और वही मालिक है इसका जो तहत सरा में.
Is it Allah subhanahu wa ta'ala says the full meaning of it that Allah is the owner of things that are above the skies, on the earth, below the earth, in between these. Allah is the owner of everything.
अजीब बात यह है कि इस नजरिए को बहुत खोल के अल्लाह का कुरान बाग में बयान फरमाया है.
And the strange thing is Allah Subhanahu wa Taala has opened up and explained the system extensively in the Quran.
और इस नजरिए में एक और बात भी है.
And there's another thing in this system.
वो ये है कि मालिक कोई नहीं और मालिक हर कोई.
He said that nobody is the owner but everybody is owner.
और वो ये है कि अमानतन मालिक.
And then we are मालिक the owner as a trustee.
मालिक हम हैं और तुमको मालिक बना रहे हैं अमानत है, अमानत के तौर पर.
God is saying I am the actual owner but I am making you the owner as a trustee.
अब किसी चीज में आपको तसर्रुफ का हक नहीं है हमारी मर्जी के बगैर.
He says that you are not allowed to do anything with whatever has been given to you without my permission.
और इस नजरिए की एक तीसरी खसूसियत और है,
एंड देयर इज अ थर्ड स्पेशलिटी ऑफ दिस,
वो ये है कि तुमको अपने दिल की गहराई से इसको मानना होगा,
एंड दैट इज दैट यू नीड टू एग्री एंड यू नीड टू बिलीव इन दिस विद द डेप्थ ऑफ योर हार्ट।
ये सिर्फ तुम पर थोपा जाएगा ऐसा नहीं,
इट्स नॉट समथिंग दैट विल बी इम्पोज्ड ऑन यू,
थोपा भी जाएगा,
समटाइम्स इट माइट बी इम्पोज्ड ऑन यू एज़ वेल,
उम्मीद तो नुकातिल नस हत्ता यकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, थोपा भी जाएगा मगर कामयाबी जब होगी इस नजरिए की जब आपका दिल भी इसको गवाही दे और उसको एक्सेप्ट करे।
He says it will be imposed on you as well, but the true value and true result and true benefit of it is when your heart also fully accepts this.
इसका नतीजा ये है कि हमारी अपनी कुछ मर्जी रहेगी नहीं,
and the result of this that we will not have our own desire.
इसका नतीजा ये है कि जब हमारी अपनी मर्जी नहीं रहेगी तो अच्छा बुरा का इम्तियाज करने का भी हमको हक नहीं है,
and then we
हम नहीं तय करेंगे।
If when we don't have desire, then we don't even have right to decide what is right and what is wrong. We will not decide it.
अच्छा वो जो वो बोलेंगे,
good is what Allah subhanahu wa ta'ala says is good.
बुरा वो जो वो बोलेंगे,
bad is what Allah subhanahu wa ta'ala says is bad.
तो जब आप इस नजरिए पर आ जाओगे,
when you come onto this system,
तो लाजमी तौर पर यह है कि इल्म जो है ना वो पूरा जो बदला गया था वो पलट जाएगा।
The desired result of this or obvious result of this, the knowledge will turn around.
कितना भी बिगाड़ा चुका हो, कितना भी मिक्सअप कर दिया गया हो, कितना भी कंफ्यूज कर दिया गया हो लोगों को, आपके पास कुरान महफूज है, इसी वजह से महफूज किया गया है कुरान पाक को, आपके पास हदीस महफूज है चूंकि वो कुरान पाक की तफसीर है, आपको पहले दिन मालूम हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना इस दुनिया को हमको काहे के लिए बनाए, हमें क्या करना है, इल्म किसको कहते हैं, यहाँ से तय हो जाएगा।
How much ever things have been mixed up, how much the confusion has been caused, but because the Quran has been preserved and this is the reason why Quran has been preserved in light of Quran and Hadith, then you will clearly understand what is right and what is wrong and what we are supposed to do. So all that fitna and all that distortion that has come in knowledge, that will be corrected right from there.
अब जिन्होंने इल्म का मतलब बदला वो बेकार हो जाएगा, सही मतलब वहाँ से तय हो जाएगा।
And then those people who have changed the true purpose of the knowledge, that will be discarded and the actual purpose of knowledge will be decided from there.
जिन्होंने तहजीब का मतलब बदला वो गलत हो जाएगा, वहाँ से तय हो जाएगा तहजीब क्या है, बदतमीजी क्या है।
People who have changed the meaning of culture, now it will be discarded and it will be decided from Allah.
जिन्होंने इज्जत का मतलब मुकरर किया वो बदल जाएगा, पता चल जाएगा इज्जत कहाँ से शुरू है, किसके साथ मुक्तस है।
And the people who have distorted the true meaning of knowledge, honor, that will be discarded as well and will be decided what true honor.
معاشرت کا پورا نظام ادھر سے صحیح ہو جائے گا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معاشرت صحیح ہے.
And all the dealings, the things will be corrected because the whole dealing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is fully saved.
پورا معاملات کا جو نظام دنیا میں بدل دیا گیا ہے وہ صحیح ہو جائے گا.
All the dealings, the system of dealings that have changed in the world, it will be corrected.
اس وقت معاملات کا نظام پوری دنیا میں اتنا مکس اپ کیا گیا ہے, اتنا گڑبڑ ہے کہ آپ صحیح کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ظاہری طور پر.
And the systems of dealing in this world have been mixed up and it been kind of so distorted that even if you want to correct it, it becomes difficult to correct.
Iski buniyad adl o musawat par nahi hai.
The foundation of this is not on justice and equality.
Iski buniyad hoshiyari se dusre ka khoon choosne par hai.
The foundation of the true dealings is based on sucking the blood.
Wo pura badal jayega kyunki aapko pata chalega ki islami muamilat hain kya.
The whole of this thing will be changed because then you will understand what the true dealings islami
dealings. Rights hai, iska matlab aapko sahi pata chal jayega.
What are the true rights, you will understand.
Ab to woh right hi ka matlab badal gaya.
Now the whole meaning of the rights.
Auraton ke bhi right hai, mardon ke bhi right hai.
The rights for the woman, rights for the man.
Hai dono ke bhi right, magar ye right thode hi.
Both of them have rights, but are these the rights of Islam is meant?
Islam batayega ki rights mard ka hai kya.
Islam will mention what the rights of men.
Aur auraton ka rights hai kya.
What are the rights of the woman?
Bachon ke kya hai.
What are the rights of
maa baap ke kya hai.
What are the rights of parents.
Hukumat ke kya hai.
What are the rights of government.
Awam ke kya hai.
What are the rights of public.
Hai ki awam hukumat ko bhi hukumat Islam right deta hai. Arbaab hukumat right rakhte hain.
The people of the government, the rulers, they will also have rights.
Unki itaat ki jayegi.
They will be obeyed.
Magar uske daire bane hue hain.
But there are some circles around it.
और आवाम की जिम्मेदारियों के राज क्या है वो भी बताया गया है.
And then what are the rights and responsibilities of the public, that's also explained.
इंसानियत के हुकूक जो है ना वो अल्लाह ही तय करता है सर.
The rights of the humanity are decided by.
कोई मालूम है कि ह्यूमैनिटी है क्या और उसके हुकूक होते क्या है.
Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who knows what is humanity and what the rights are.
पूरा का पूरा निजाम यहाँ से वहां तक.
And the whole system from here to there.
अमन कैसे आएगा.
How will we get peace.
तीन चीजों की जिम्मेदारी इस पूरी दुनिया के अंदर कैसे सेफ्टी कैसे कायम होगी.
How we be having the safety of three things in this.
पूरी दुनिया की तीन सेफ्टियां असल होती हैं.
There are three safeties that are important in this world.
पूरी दुनिया के इंसानों की जान की सेफ्टी.
There's the safety of life.
उनके माल की सेफ्टी.
Safety of wealth.
उनकी इज्जत की सेफ्टी.
Safety of their honor.
ये तीनों की सेफ्टी अगर मिल जाए तो मुआशरा सही हो जाए, सुकून में आ जाता है.
If everybody gets the safety of these three things, the whole society will be at peace.
और ये अल्लाह के बनाए हुए निजाम से हटकर हो ही नहीं सकते.
And this safety of these three things cannot be got without having the society.
Impossible है.
This is impossible.
कुछ भी कर लो आप.
Whatever you do.
वही करना पड़ेगा जो अल्लाह ने बताया, क्योंकि उन्होंने बनाया है इस मशीन को.
Because he has created us.
उनको पता है कि इस मशीन की क्या है, रनिंग का सिस्टम क्या है, सही रहने का क्या है, बिगड़ने का क्या है.
He knows that how this machine will run properly and what is the ways of having it right.
तो ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल कर लो, ये था.
That's why accept la ilaha illallah. This is what was.
कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल करने वाला आदमी दिल से इस बात को मान ले के मैं मालिक नहीं.
The person who has accepted la ilaha illallah from the depth of the heart, he realized that I'm not the one.
मैं किसी और का हूँ.
I belong to somebody else.
मेरा माल उसका मैं मालिक नहीं हूँ, वो किसी और का है.
I don't own my wealth, somebody else owns it.
قرآن پاک میں کلیئر ہے یہ بات.
And this is clear
in the Allah اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو ان کے مال.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ said that Allah سبحانہ وتعالیٰ told me of it. Allah سبحانہ وتعالیٰ purchased the جان and مال of you.
اب تم کو اپنی تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنی
چاہیے. You cannot do anything that you desire.
اور یہی امتحان ہے کہ مرضی رکھنے کے باوجود مرضی کو استعمال نہیں کرنا ہے.
This is the test that even after having the ability to decide, you're not able to use your desire.
سب سے زیادہ مذہب کی رکاوٹ مرضی سے ہوگی.
The thing that is off of your desire.
میری مرضی.
My desire.
میرے دل میں آتا ہے.
This comes in my heart.
میں بھی کچھ چاہتا ہوں.
I would like something.
سب سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا بھی تو کچھ ہے آخر.
Every person will say that even I do have some right.
خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کامیابی کا موقع ہو، ناکامی کا موقع ہو، کمانے میں ہو، پہننے میں ہو، رہنے سہنے میں ہو، سارا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی سے آتا ہے.
He said that you will see that in happiness, in sorrow, in earning, and all things that a person typically go through, where do you get the issue? The issue is here.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات سے تعبیر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی مرضی چلاتا ہے وہ میرا اپوزیشن ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala says, "Could be the person who follows his desire, he's opposing."
वो खुदा बनके खड़ा हुआ है.
He is standing up like a god.
वो बोल नहीं रहा कि मैं खुदा हूँ, मगर कर रहा है खुदाई.
Even though he's not saying I'm a god, but what he's doing is like behaving like.
अफ़राई तो मन इत्तहाद इलाहु हवाहु. क्या आपने उस आदमी को देखा जिसने अपनी अपनी हवा अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बनाया हुआ?
Allah subhanahu wa ta'ala says, "The close meaning of it, have you seen that person who has made his desire as a god?"
Islam कहता है कि surrender करो.
Islam says, "You surrender yourself."
और किस बात को? अपनी ख्वाहिश को surrender करो.
Surrender what? Surrender your desire.
अब हम अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ कैसी होती है?
Just imagine how this thing would be.
हम कलमा तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन कलमे का जो मकसद है उस तक हमारा ज़हन नहीं पहुंचा कि क्या चाह रहे थे अल्लाह ने.
Even though we are the disciples of kalima, but we have really not understood what Allah subhanahu wa ta'ala desires from this kalima.
Sahaba kiram ki khususiyat ye thi ki wo padhne se pehle samajh jate the ki iska ye matlab hai.
Sahaba raziyallahu anhu, speciality of sahaba raziyallahu anhu mein was even before reciting the kalima they would understand this is what is this.
Balki wo isi wajah se nahi padhte the jab tak nahi padhte the.
That's why they didn't read this, because they had this understanding.
Ki agar main padhunga, jis din padhunga us din foran mujhe badal jana padega.
Because they knew that the day when I read this kalima la ilaha illallah, I would have to completely change.
Aur sahaba ke waqiat beshumar iski shahadat
dete hain. There are stories of sahaba raziyallahu anhu mein who testifies this.
Ek sahabi the,
he was a sahabi.
Ye sahabi nahi bane the,
he didn't become a sahabi.
Usse pehle unki ek mehbooba thi.
Before that he had a lover.
Wo ittefaq se uske paas gaye hue the.
And he went to her.
وہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ بہت بہترین ڈانسر بھی تھی اور بہت بڑی بہترین جو ہے نا گانے گویا بھی مغنیہ بھی تھی.
It was famous about that lady that she was a good dancer and singer as well.
وہ جانا والا ڈانس بھی کر رہی تھی اور گا بھی رہی تھی.
And she was dancing and singing at the same time.
اس درمیان میں اس نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے نا شراب بھی ہے، اس وقت شباب بھی ہے، مگر اس وقت کباب نہیں ہے.
And the lady while dancing, she said that, you know, we have youth here, we have wine, but we don't have anything to eat.
उसने कहा मैं अभी लाता हूँ. उनके पास मशहूर यह था कि अगर शराब के साथ में ऊंट के जिगर का ऊंट के कलीजे का लीवर का कबाब बना के खाया जाए तो वो बहुत उनके पास मजे की चीज थी.
And it was famous at that time that when person is drinking wine, if he had the kebab of the liver of the camel, that was something special.
उसने कहा कि मैं अभी जाके जिगर लेके आता हूँ ऊंट का.
He said, "I'll just go right away and get the liver of a camel."
वो बाहर गए.
He went outside.
راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے.
On his way, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم met him.
आपने उनको पढ़ के दावत दी. आपका तो मिजाज ये था कि आप इंफरादी दावत को बहुत अहमियत देते और आजकल हजरत जी सबसे ज्यादा इस पे जोर दे रहे हैं कि ज्यादा अहम चीज इंफरादी मुलाकात और दावत है. और उसको उस चांस को खोना नहीं. जितना ज्यादा आदमी अफराद से मुलाकात करके उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करेगा उसके ऊपर भी हिदायत उतरेगी और लोगों पर भी हिदायत उतरेगी.
The more the person will individually meet a lot of people and bring them towards Allah subhanahu wa ta'ala, direct them towards Allah subhanahu wa ta'ala, the hidayat will descend on him and will also descend on the people who is talking.
Jaise Huzur Pak Sahab ko unki mulaqat hui, aapne daawat deni shuru
kar di. Rasulullah Sahab ne met this person, he started giving him daawat.
Wo Musalman ho gaye.
He became Muslim.
अब जाहिर है कि इस कन्वर्सेशन में टाइम भी लग गया होगा तो थोड़ी ताखीर हो गई.
And obviously it took some time in this conversation, so it was some late delay.
अब वो बच्ची जो है वो परेशान होकर दरवाजे में आके खड़ी हो गई.
And that same girl, she was worried and she came and stood in the door.
किधर भाग गया ये?
Where did this person go?
थोड़ी देर के बाद देखा तो क्या नीचे मुंडी डाल के आहिस्ता से आ रहे टहल लेते हुए.
After some time she sees that this person has bowed his head and walking slowly towards her.
और जब घर के सामने आए तो घर के सामने से आगे निकल गए.
And when he came to that house, he went forward. He didn't stop at the house.
उसने कहा कि वो पागल किधर जा रहा है?
He said, "Oh, foolish person, where are you going?"
उन्होंने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा.
He didn't turn towards her.
उन्होंने हाथ उठाकर कहा, "मैं मुसलमान हो गया."
And he lifted his hand and said, "I became Muslim."
सोचने की बात यह कि क्या चीज थी ये.
And just need to understand what was this thing.
ये वो समझ थी ला इलाहा इल्लल्लाह की.
This was the understanding of la ilaha.
कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला अपने को बेच चुका होता है.
The person who says la ilaha illallah, he has sold himself.
उसके बाद ना उसकी अपनी ख्वाहिश.
After that he has no his.
ना उसके अपने जज्बात.
And he doesn't have any emotions of his own.
बंदगी है.
And it's only worship.
हर तरह शानों के सामने सरेंडर होना है.
Surrendering in front of Allah.
उनकी मर्जी को सामने रखना है.
Understanding his wishes.
उन्होंने पलट कर तक नहीं देखा.
He didn't even turn and looked at her.
ऐसा हो गया वैसा हो गया माफ करो अब हम नहीं रह सकते सिगरेट कप का टाइम आ गया ये कुछ भी बोला नहीं
wait and he turned towards her and explained her that this is what happened and it's time for us to break up. He didn't say anything, just said that we have to have the
conversation. Aur ajeeb baat ye hai ki wo ladki jo hai na usne bhi koi aitraz nahi kiya.
And the same thing is even that girl, she didn't say anything.
Wo jante the is baat ko
because they understood.
Jab musalman ho gaya to kya mere aap.
He said that if he has become Muslim then he's not mine.
Khatam mamla khud ba khud automatically khatam ho gaya.
The whole thing is finished now.
La ilaha illallah ye hai.
This is what la ilaha illallah.
ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत फितने के जमाने में इसलिए करना है.
That's why we have to do the effort of la ilaha illallah at the times of
fitna. उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में एक जगह बैठे हुए रो रहे थे और गमगीन थे.
उस्मान रजी अल्लाह तआला after the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting at a place and he was full of sorrow and he was crying.
हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के उधर से गुजर हुआ.
हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला passed by that way.
क्या बात
है
हुजूर को याद किया जो अब तो सबको था उस मौके पर.
Obviously he was remembering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and everybody was up there.
फिर उसके बाद कहने लगे मुझे सबसे ज्यादा गम इस बात का है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पैदा फरमा गए और हमने पूछा नहीं कि फितने के वक्त का हल क्या है.
He said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has passed away from this world and we haven't asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam what is the solution during the times of fitna.
तुम्हारा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने पूछ लिया है.
तो तुम्हारा रजी अल्लाह तआला से सर आयत है
और वो फितने का हल है ला इलाहा इल्लल्लाह.
सॉल्यूशन ऑफ द फितना इज ला इलाहा इल्लल्लाह.
ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत है इसकी हकीकत समझना है.
द एफर्ट ऑफ द ला इलाहा इल्लल्लाह वी नीड टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज.
ये तो इस बदतमीजी के तूफान में माहौल के अंदर जब एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है और थोड़े दिनों में जो एक खास तब्दीली नजर आती है ये पढ़ने की चीज है कि ये क्या चीज है ये जो आई पाए.
Said that during these times of corruption, when a person goes out to battle with Allah Subhanahu wa Taala for a little while, when he comes back, there is a change in him. This is something that needs to be read and researched. Then what is this thing that changes?
अगर इस हकीकत के साथ में हम मेहनत करना शुरू करें ला इलाहा इल्लल्लाह पर तो क्या से क्या बात हो जाए?
Just imagine that if you want started making the effort on la ilaha illallah with this true realization. What will be the effect?
और इस हकीकत के साथ अगर उम्मत में मेहनत की जाए ला इलाहा इल्लल्लाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत उम्मत पर की जाए तो उम्मत का क्या हाल होगा?
Just imagine if we make effort on the whole ummah with this true realization, what will be the result and effect of that?
फितने का इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत है.
Solution of the fitna is the effort of la ilaha illallah.
सवाब के काम बहुत हो सकते हैं.
There are a lot of things which bring you sawab and good deeds.
और दीन के बहुत से तकाजे होते हैं, सारे तकाजे पूरे करने के हैं, सवाब के काम बहुत हैं, सारे कामों में हिस्सा लेना चाहिए, मगर हर काम का एक असल मकसद होता है,
बट देयर इज अ पर्पस ऑफ एवरी एफर्ट।
ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत का कोई बदल नहीं है,
देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट ऑफ लाइफ।
इसका अपना मकसद अलग है,
देयर इज अ पर्पस ऑफ इट,
इसका अपना नतीजा अलग है,
देयर इज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हिच इज डिफरेंट,
इसका जाविया अलग है बिल्कुल,
द एंगल ऑफ दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट।
वो आदमी को सही करता है,
एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ पर्सन राइट।
अगर इस पर मेहनत नहीं हुई तो अपना हम जाहिरी तौर पर अपने आप को ईमान वाले मुसलमान वाले दिखाने के बावजूद भी अंदर से गड़बड़ में होते हैं।
इवन यू नो if we don't have this right that could apply in Allah, even though outwardly we are showing ourselves as Muslims, internally we will be disturbed.
इस वजह से क्या है, इस हकीकत को सीखना है।
That's why we need to learn this reality.
इस वजह से ये बात को अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर फर्ज रखा है।
That's why Allah subhanahu wa ta'ala made this farz on the ummah.
ये जरूरी काम है,
this is a very important work.
बहुत मर्तबा बहुत नेक लोग जो है वो समझते हैं कि ये बहुत नेकी का काम है, सवाब का काम है, करने तो बहुत अच्छा है,
इफ यू डू इट इट्स गुड,
नहीं करें तो मौके की बात है,
इफ यू डोंट डू इट वी विल डू इट व्हेन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी।
ऐसी बात नहीं है,
दिस नॉट हाउ इट इज।
इसी वजह से आजकल ये कहा जा रहा है कि इसको अमर समझ के करना है, अल्लाह का हुक्म है ये।
दैट्स व्हाई वी टोल्ड दीस डेज दैट वी डू इट एज दिस इज कमांड फ्रॉम अल्लाह।
जिस चीज को अमर समझा जाता है उस चीज के उसको लेने का अंदाज अलग होता है।
द पर्सन टेक्स समथिंग एज अ कमांड ऑफ अल्लाह, ही टेक्स इट इन अ वेरी डिफरेंट,
उसको मुआफिक ना मुआफिक दोनों हालतों में लिया जाता है।
ही विल टेक इट इन बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल,
हालात इजाजत दे रहे हो ना हो ना दे रहे हो फिर भी लिया जाता है।
द कंडीशन परमिट्स हिम और डोंट परमिट हिम, इवन देन द पर्सन विल टेक,
हालात में भी नहीं छोड़ सकता है, अहकाम जो है वो हालात से खत्म नहीं हो जाते,
बिकॉज द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे आर नॉट अब्रोगेटेड बिकॉज ऑफ द कंडीशंस,
बल्कि हालात में तो अहकाम पर और पाबंदी की जाती है।
रादर इन द कंडीशन यू शुड बी मच मोर स्टेडफास्ट इन द कमांड ऑफ अल्लाह।
हालात आते हैं अहकाम पर नहीं चलने की वजह से,
द कंडीशंस कम बिकॉज द पर्सन डजंट फॉलो द कमांड,
अहकाम पर अहकाम पूरे करना ही हालात को सही करने का जरिया बनेगा।
इन द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बिकम द मींस ऑफ सॉल्यूशन फॉर द कंडीशंस।
इसी वजह से जिस तरह के भी हालात हो अहकाम नहीं छोड़े जा सकते।
दैट्स व्हाई व्हाटएवर द कंडीशंस विल बी यू कैन नॉट लीव द कमांड,
काम तो करना है,
यू हैव टू डू द वर्क।
अलबत्ता काम की नौयत बात मर्तबा ऊंच-नीच हो जाती है,
बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस द वे यू डू द थिंग्स माइट बी डिफरेंट।
नमाज मुकीम की हालत, इकामत की हालत की नमाज अलग है, मुसाफरत की नमाज अलग है, मगर नमाज तो होगी।
लाइक अ पर्सन हु इज स्टेइंग इज लोकल, हिज सलाह इज डिफरेंट देन सलाह फॉर ट्रैवलर, बट यू हैव टू परफॉर्म सलाह।
बीमारी की नमाज अलग हो जाएगी, तंदुरुस्ती की अलग जाएगी, लेकिन होगी नमाज।
The person who is sick, he'll pray differently. The person who is healthy, he'll pray differently, but there will be salah.
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के जिम्मे इस बात को रखा है मेरे
को। That's why Allah subhanahu wa ta'ala has kept this as a responsibility of this ummah.
और इस दावत के काम की और भी बहुत सी अजीब खसूसियात हैं।
And there are many other specialities of this effort of da'wah.
अल्लाह पाक ने इसको कुछ ऐसे अंदाज में रखा हुआ है मेरे दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन होने की वजह से जो जिम्मेदारी इस उम्मत पर आ सकती है वो जिम्मेदारी इससे पूरी होने की शक्ल बनाई।
effect to this that the responsibility that comes on us because of being the Ummah of Rasulullah SAW and he being the last prophet, Allah subhanahu wa ta'ala has kept the full thing in this effort.
आपके आलमी नबी होने की हैसियत से, क्योंकि आप काफतुल खल्क की तरफ भेजे गए, सारी मखलूक की तरफ आप भेजे गए हैं, आपके आलमी नबी होने की वजह से ये उम्मत उस जिम्मेदारी को कैसे पूरी करेगी उसकी शक्ल इसमें
है। He said that how Rasulullah SAW has been made the universal prophet and how we can fulfill that responsibility, that whole structure has been put in this effort.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कयामत तक का नबी होने की वजह से बार-बार वक्त के कयामत तक जितने नस्लें आती रही, हालांकि हर 100 साल में पूरी नस्ल चेंज हो जाती है, अब तक 1500 साल हो गए ना, तो 1500 नस्लें जा चुकी हैं, पूरी नस्ल ही बदल जाती है इंसानों की, क्योंकि 100 साल के लोग होते हैं सारे, तो हर आने वाली नस्ल तक दीन को मुंतकिल होना अपनी असली हालत में कयामत तक आने वाले वक्त के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम को मुंतकिल होने की जो शक्ल है अल्लाह ने वो दावत में रखी है।
That Rasulullah SAW being the prophet until the end of the times, because Rasulullah SAW has been sent to the mankind until the day of Qiyamah, that all that thing that Allah SWT has kept in this, like you will see the generations change every 100 years. If you look from time of Rasulullah SAW for 1500 years, 15 generations have changed. So until the hidayat of the mankind to come till the day of judgment, the whole structure Allah SWT has kept in this effort.
जो जो काम जितने बड़े फर्ज को अदा करने वाला होता है उस काम की अहमियत उतनी बड़ी हो जाती है.
The work that is being there associated with the biggest farz, you will see that's how important that.
तो कयामत तक आने वाले दिन को मुंतकिल होने की जो चीज मौकूफ वाले होगी आप अंदाजा करो उसकी अहमियत कैसी होगी.
Just imagine what would be the importance of that effort which is being given so that deen can be preserved all the way until the end.
सारे आलम में दीन की बात पहुंचाने के वास्ते जो चीज जरूरी होगी आप अंदाजा करो कि उसको कितनी अहमियत दीन में हासिल होगी.
How much importance this effort will have which will have the results of deen being spread to the people all over the world.
जिस आखिरी नबी के बाद में कोई चूंकि नबी नहीं आएगा तो उस नबी के काम को पूरी दुनिया पर जो रख दिया गया होगा तो वो जिससे पूरा होगा होगा अंदाजा फरमाइए कि उसकी अहमियत कितनी ज्यादा होगी.
Imagine how much the importance of that effort will be. That effort will be bringing into existence the responsibility.
हमें अंदाजा नहीं है कि अल्लाह पाक ने इस मेहनत को मेरे दोस्तों कितना अजीम बनाया.
We have no idea that how Allah Subhanahu has given importance of this.
फजीलत भरी हुई है कुरान पाक में हदीस मुबारक
में. Virtues of this is filled in the Quran.
इस पे ज़हन काम करता नहीं था कि क्या बात है इतना ज्यादा क्यों फजीलत है इस काम की.
और
करने में पता चलता है कि जिसकी नौवियत ऐसी होगी तो फजीलत उसकी रखी गई अल्लाह पाक की तरफ.
And by looking into the depth, then you will understand the thing that is so vast, then obviously it will be important.
और इतने अहम काम से अगर गफलत हो जाए कि कोताही होगी उम्मत की तो नुकसान भी उसी पैमाने का होगा.
That's why if we forget and if we show leniency towards such an important work, the destruction and loss will also be of that magnitude.
जितने पैमाने का नुकसान होगा उसके एतबार से वईद होगी. इसीलिए दुनिया में भी पकड़ लिया जाएगा इस उम्मत को इस काम में कमी करने पर.
That's why Allah Subhanahu will also get hold of ummah even in this dunya because of reduction in this world.
आखिरत में तो होगा ही होगा दुनिया में पकड़ लिया जाएगा.
Whatever is would happen and happen and will happen in akhirah but even in this world they will be getting.
क्यों इस बात है कि अगर ये मुसलमान नहीं करेंगे इस काम को तो सारी दुनिया तो बदतमीजियों से भर जाएगी.
This is the Muslims do not do this, that the whole world will be
filled with fitna and
fasad.
से भर जाएगी
कुफ्र एंड डिस्ट्रक्शन
शिर्क और दहरियत से भर जाएगी
शिर्क एंड एथिज्म
गफलत और मासियत से भर जाएगी
विल बी गफल एंड मासिया
और मुसलमान भी धीरे धीरे पीछे की तरफ चला जाएगा.
एंड इवन द मुस्लिम विल स्टार्ट स्लिपिंग
डाउन और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस मंजर
को सी विद आवर ओन आईज.
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक काम की बड़ी अहमियत बनाई
है.
हम लोग सुनते रहते हैं इसके फजाइल को और इसके नहीं करने के नुकसान को.
We keep listening about the virtues and the destructions of not doing it.
उसको सोचना है इरादे तौर पर.
And we need to concentrate.
यानी कि बार बार सुनते रहते रहे तो सुनते रहते नहीं उस पर इतना मुराकबा करना कि उसका असर हमारे जमीर पर आए.
Is it that not that just get over here, we thought about the myth, we listened about it, we heard about it, but we should be thinking about it so deeply that it has effect on us.
और उसकी वजह से फिर आदमी अज़्म करे इरादा करे कि नहीं मुझे अपनी जान और माल में जरूर इस काम के लिए हिस्सा निकालना है. हर मुसलमान की जान में इसका दीन के इस काम का हिस्सा है. और हर मुसलमान के माल में दीन का हिस्सा है. अब तक जितना अल्लाह ने मुझे माल दिया मैं सोचूं कि कितने मैंने अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए लगाया.
And the wealth that Allah Subhanahu has given to me, I should think about this: that how much I used for spreading the Deen of Allah Subhanahu.
सवाब का काम करा उसका हिसाब चाहे अलग कर लो
आप. You should do the account separately for those things which you have done as virtues.
मैंने कितने गरीबों को खाना खिलाया.
How many poor people I have fed.
कितने जरूरतमंदों की बच्चियों की शादी मैंने करा दी.
How many girls I have kind of
सैलाब में मुसीबत ज्यादाओं में मैंने कितने पैसे बांट दिए.
The people who have hit with destruction and other things, how much money they spend.
ये सवाब के काम है.
These are all things of good.
दीन फैलाने के काम नहीं होते.
These are not things of spreading deen.
दीन फैलाना जिसको नुसरत दीन कहा जाता है नुसरत रसूल कहा जाता है वो है जिसका ताल्लुक फैलाने से हो.
And the thing that the nusrat of deen and nusrat of rasul is something associated with spreading the deen.
Madaris ka kaam albatta deen phailane se taluq rakhta hai.
And the effort of the madrasa is associated with spreading.
Kitabon ke likhne ka kaam deen phailane se taluq rakhta hai.
Books is associated with spreading of deen.
Waaz aur tabligh ka kaam deen phailane se taluq rakhta hai.
Lectures and tabligh is
associated with spreading. Har wo kaam uska phailane se taluq ho usme jaan maal lagna hai.
And everything which is associated with spreading the deen we should put our life and
wealth. Aur is umumi daawat ke andaaz ke saath ke deen ka phailana iska rang lagega.
And then the spreading the deen like the general way with the daawat and tabligh the effect of this is completely different.
इसकी खुसूसियत ये बताई गई मेरे दोस्तों हदीसों में कि ये सारे नेक अमाल का सरदार है.
एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस इज मेंशन इन हदीस दैट दिस इज द लीडर ऑफ ऑल द गुड डीड्स.
सय्यदा अमाली अहलिल बिर नेक लोग इतने काम करते हैं नेक लोग इतने नेक काम करते हैं उन सबका सरदार ये हैं, क्योंकि ये हैं सारे अमल जिंदा होते हैं, ये नहीं है सारे अमल ठप हो
जाते हैं. ऑफ दीन इज द लीडर ऑफ ऑल द गुड थिंग्स द गुड डीड्स दैट पीपल डू बिकॉज़ इफ दिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस देन ऑल द अदर गुड डीड्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ इट इज नॉट देयर इन एग्जिस्टेंस देन स्लोली एवरीथिंग एल्स विल फेल.
इसलिए हम में से हर एक को बहुत ही संजीदगी के साथ में यह तय करना है कि हमें इस मेहनत में हिस्सा लेना है. और बहुत ही ज़ील और जज्बा बनाना चाहिए कि मतलब सारे आलम में जाऊंगा अल्लाह के दीन के, अल्लाह के इस पैगाम को लेकर और सारे आलम को मुतवज्जे
करूंगा.
जितनी बड़ी नीयत करेंगे अल्लाह उतना बड़ा काम लेगा. आदमी के हौसले के साथ अल्लाह का मामला है. जज्बा आदमी का अच्छा हो, नीयत अच्छी होती है तो असबाब उसके पास है या नहीं है ये नहीं देखे जाते, अल्लाह खुद ही असबाब फिर बना देते हैं. इसलिए इरादा करना है कि हमको इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाना है दूर और देर के लिए.
तो
तैयार है इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए. सारे साथियों से दरख्वास्त है कि वो अपने अपने प्रोग्राम बताएं.